दोस्तों जब हम बच्चे होते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमें प्रभावित करती हैं और उनमें से एक चीज होती है हमारा स्कूल। मुझे तो मतलब जो है डर लगता था कहीं ना कहीं, और जब मैं स्कूल जाता था कई बार ऐसे होता था जब भी क्लास में अपना होमवर्क नहीं हुआ होता ना, तो ऐसा लगता था यार आज कुछ हो जाए और आज छुट्टी हो जाए, और इस तरह के ख्याल लेके कई बार जाता था। और एक आध बार कभी साल में एक आध बार ऐसा हो भी जाता था बाय द वे, बट आई वाज नॉट दैट बैड स्टूडेंट एज वेल, इट वाज ऑन अ लाइटर साइड। एंड एक और चीज होती है स्कूल में, इससे हमें और ज्यादा डर लगता है, पता है क्या? गेस, प्रिंसिपल। यस एग्जैक्टली। लेकिन हमारे साथ आज एक ना बहुत आउट से बेहतरीन पर्सनालिटी है और बहुत सारा काम करती है एकेडमिक से रिलेटेड, और मैं चाहता हूं कि आज हम उनसे बात करें। नमस्कार, शो चल रहा है गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क, और मैं हूं विवेक शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड पॉडकास्टर। लेट मी इंट्रोड्यूस एंड इनवाइट माय वेरी गुड फ्रेंड मिसेस ऋचा कुमार। ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो पे, और मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं।
जरूर, मेरा नाम ऋचा कुमार है जैसे सर ने बताया, और मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। इस क्षेत्र में करीब 25 साल अब होने जा रहे हैं एज अ सुपरवाइजर, एज अ प्रिंसिपल, और अब एक एकेडमिक डायरेक्टर ग्रुप ऑफ स्कूल्स को मैनेज कर रही हूँ। बच्चों के साथ सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है और इसीलिए इस कार्य में जुड़ी हुई हूँ।
ग्रेट। अच्छा ऋचा, जैसे मैं बता रहा था कि अपनी कहानी बचपन में कैसा एकदम खौफ सा हुआ करता था स्कूल का। अच्छा, हमारे टाइम पे स्कूल भी बड़े अलग हुआ करते थे, आज तो स्कूल्स मतलब डिफरेंट ही टाइप के होते हैं। हमारे टाइम पे तो जब कोई शरारत करता था बच्चा तो पेरेंट्स जाके बोलते थे टीचर को, इसको मारो, अपना ही बच्चा समझ के मारो। आज तो चीजें बहुत एकदम अलग हो चुकी हैं। सो आपको भी डर लगता था क्या मतलब स्कूल में?
मैंने स्कूल बहुत एंजॉय किया है, द फेवरेट ऑफ द टीचर, शायद मेरी क्रिएटिविटी के कारण, मेरी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के कारण, चैलेंजेस लेने के कारण, शायद मुझे हमेशा स्कूल जाने में मजा आता था, बट एग्जाम के समय बहुत डर लगता था।
क्या बात है, आपने एक्चुअली एक मैं बोलूंगा कि शायद आपने वो जो तार हैं वो छेड़ दिए, और इनफैक्ट क्योंकि आजकल एग्जाम चल रहे हैं और सीजन है एग्जाम का, और मैं जितना जानता हूँ आप पेरेंट भी हैं, यू नो यू आर अ सक्सेसफुल एजुप्रेन्योर, मैं बोलूंगा एंटरप्रेन्योर हैं आप, और काफी सारा काम किया आपने एजुकेशन के फील्ड में, यू नो लाइक, और बहुत सारे यू नो लाइक रोल्स आपने निभाए अपनी जिंदगी में। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो है हम बात करें इस बारे में कि एग्जाम को रिलेटेड जो बच्चों में खास करके जो स्ट्रेस होता है, बहुत सारी अप्रिय घटनाएं भी सुनाई देती हैं, हालांकि आज तो बहुत सारे रूल्स जो हैं वो आउट से काफी नॉर्मलाइज हो गए हैं या काफी यू नो नरम हो गए हैं। हमारे टाइम पे तो बहुत सख्ती हुआ करती थी व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एंड अदर थिंग्स, लेकिन तो भी आज बड़ी एम्बिग्युटी है बच्चों में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक होड़ सी लगी कि मेरे तो इतने परसेंटेज आने चाहिए, उतने परसेंटेज आने चाहिए। शायद इसकी वजह से भले कई बार आज तो पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भैया टेंशन मत ले, लेकिन बच्चा जो है वो टेंशन लेके बैठा होता है। सो आज हम जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं, और हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो एग्जाम का जो स्ट्रेस है, देखिए हम भी कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं, स्कूलों में पढ़े हुए हैं, और जो बच्चे हैं जनरेशन है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा, सो ये एग्जाम का जो स्ट्रेस है ये कितना लाजमी है, कितना नॉर्मल है, कितना नेचुरल है?
एग्जाम का प्रेशर जो है वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कोई हमें देख रहा है, कोई हमें असेस कर रहा है, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी। आप तैयार होके निकले हो, अगर आपने आपको किसी ने तारीफ करते लगा बड़ा अच्छा लगा, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, बट किसी ने आपको ध्यान ही नहीं दिया था, अरे यार मैं इतना तैयार होके, किसी ने मुझे ध्यान ही नहीं दिया, मतलब एक अलग तरीके की सोच,
डिजेक्शन टाइप का फीलिंग हो जाती है,
एक फीलिंग आता है। तो एग्जाम का बेसिकली, क्योंकि वो सब कुछ आपके अंदर जो आपने समझा, जो आपने सीखा, वो सब आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहे, उसमें एक फियर रहता है, मैं नहीं कर पाया तो, मुझे कोई कुछ बोलेगा तो यहाँ बहुत बड़ा रोल हमारे होम स्कूल कम्युनिटी की रहती है। होम स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप जो है, मैं जिस बारे में बात करना चाह रही हूँ आज, वो ये है कि रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और दोनों इंटीग्रेटेड होना बहुत जरूरी, खासकर जब हम एग्जाम के समय, क्योंकि स्कूल में टीचर को जॉयफुल लर्निंग पे फोकस करना चाहिए और घर पे पेरेंट्स को पर्पसफुल लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, तो एग्जाम देने में बच्चों को मजा आएगा। यहाँ एक छोटी सी चीज है जो लोग मिस कर जाते हैं, बट अभी जो नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेके आई है, और हम लोग शायद आज इतने साल हो गए, 12-15 साल से तो मैं वर्कशॉप्स ले रही हूँ पेरेंट्स की, और मैं उन लोगों को समझाती रह रही हूँ कि भाई लुक ऑन द सॉल्यूशन, डोंट लुक एट द प्रॉब्लम. सो द थिंग्स आर इजी फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चा तो खुद ही परप्लेक्स्ड है, बच्चा खुद ही परेशान है, हम उसे और परेशान कर देते हैं उसके ऊपर अपनी आकांक्षाएं लाद के. सो इट इज बेटर दैट वी गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज गुड इन मी, हाउ आई कैन टेक इट फॉरवर्ड, हाउ आई कैन डू वेल. एनकरेज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स फियर से बाहर निकलने के.
राइट,
रोल ऑफ एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट.
जी अच्छा, एक कॉमन सी चीज मैंने देखी है, मतलब मैं अपने परिवार की बात करता हूँ. मतलब अभी मेरी जो डॉटर है तंजिल, वो सी जस्ट ग्रेजुएटेड इन थर्ड स्टैंडर्ड, एंड अभी पिछले हफ्ते जो है उसके एग्जाम थे. तो माय वाइफ वाज लाइक यू नो यार, इसको ये नहीं खिलाना, इसको आइसक्रीम नहीं खिलाना ना, कल इसका एग्जाम है, फीवर नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ये खिला दो वो खिला दो, तो मतलब जो है बुद्धि तेज होगी काइंड ऑफ थिंग. मतलब बहुत सारी चीजें होती है. मतलब हम तो खैर ये तो छोटा बच्चा है और एक बड़ी न्यूक्लियर सी फैमिली, लेकिन बड़ी फैमिलीज में या जहां बड़े बच्चे होते हैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. देखिए माँ बाप कहीं जो है गलत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको भी आई मीन इट्स देयर लव और रेदर इट्स देयर प्रोटेक्शन कि मेरा बच्चा जो है मजबूत बने, मेरा बच्चा जो है बेहतर हो. लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या हमारे समाज में हमारी सोसाइटी में है वो ये है कि हम में से सब लोग ना, सारे के सारे लोग, अगर मैं कहना चाहूं तो शायद मैं कह सकता हूं, हमें ना जिताने की कोशिश करते हैं. हर आदमी हमें ये सिखाता है कि जीतना कैसे चाहिए, कोई ये नहीं सिखाता कि फेल कैसे होना चाहिए, हारना कैसे चाहिए, या अगर हार जाओ तो उससे बाउंस बैक कैसे करना चाहिए. आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है इस बारे में?
मैं अक्सर ये एक वर्कशॉप मेरे बच्चों के साथ लेती हूँ लाइफ स्किल्स में. फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, फेल का मतलब ये होता है, फेल का मतलब ये नहीं होता है कि मैं नाकाम हूं, मतलब मैंने अपनी कोशिश जारी रखी है, ये इम्पोर्टेंट है. तो नजरिया समझाना ये बहुत बड़ा रोल, अगेन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे आ जाता है कि बच्चों को हम शुरू से इस चीज के बारे में बताएं कि आपको कोशिश तो करना ही है, हार जीत अगर प्रोसेस फॉलो किया. मैथ्स का अपने सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मैथ्स का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड आपने उसको प्रोसेस किया, बट अगर कहीं पे भी वो एरर प्लस और माइनस का कर दिया तो आपका आंसर तो रॉन्ग ही आने वाला ना. बट एग्जामिनर क्या करता है, वो देखता है कि अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया तो आपको अटेम्प्ट के लिए मार्क्स तो देता ही.
वाओ,
सो दैट्स नॉट फेल, दैट इज मेकिंग एन अटेम्प्ट इन लर्निंग.
जी, एक और बड़ी गौरतलब बात है ऋचा जी कि देखिए आपने बहुत उम्दा तरीके से बताया कि मतलब जो फेलियर है वो फेलियर एक्चुअली है ही नहीं है, इट्स क्वाइट सब्जेक्टिव. ये तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है. आप इधर से देख रहे हो पंखा लेफ्ट टू राइट घूम रहा है, उधर से देख रहे हो राइट टू लेफ्ट घूम रहा है. इनफैक्ट कई बार ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जिन्होंने बड़े मायूस से फील कर रहे हैं, क्या हुआ मेरे 87% आए. अरे भाई 87 से नीचे वाले भी हैं, तुम तो पास, मतलब उनके लिए तो तुम भगवान हो, ये क्यों सोच रहे हो कि इतने कम नंबर आए हैं. और अगर सारे के सारे लोग अगर 100% अटेम्प्ट करने लगे, ठीक है, इट्स गुड. सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने लाइफ स्किल की बात करी, सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ स्किल जो है वो इस तरह के जो एकेडमिक स्किल्स हैं उससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. लेकिन कुछ ऐसे उसूल हैं हमारे यू नो दुनिया में, हमारे समाज में, कि मतलब जब तक वो आपके जो एफर्ट्स हैं, जैसे आपने बोला कि एफर्ट के हिसाब से भी लोग मार्क्स दे देते हैं, लेकिन वो जब तक आपके रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखता है ना, वो बड़ा एक्सेप्टेंस नहीं होता है कई बार, ऐसा लगता है मुझे. हालांकि देखिए बहुत तरह के लोग हैं, हम भी जब, मैं और आप भी, मैंने आपको थोड़ा बहुत जो ऑब्जर्व किया है, आप भी जब किसी को इंटरव्यू करती हैं तो आप ये नहीं पूछते कि तुम्हारे कितने परसेंट मार्क आए, आप ये पूछते हैं कि तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है, तुम क्या कर सकते हो.
सर हम स्किल पे फोकस करते हैं.
जी जी,
क्या स्किल्स हैं उसके.
जी, लेकिन जब इमीडिएटली हम यू नो 10th 12th या ग्रेजुएशन से निकलते हैं ना, तो हर आदमी जो हमें उसी बैरोमीटर से नापता है, तो उस समय पे इसको कैसे डील करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इसको.
एक बहुत खूबसूरत चीज है जो आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, ठीक है. जज करने वाले लोग तो बहुत बैठे हैं, बट आत्मविश्वास भरना वो सबसे बड़ी चीज हो जाती. और जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई विल ऑलवेज गेट द बेस्ट, ठीक है. ये कोट्स बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने इसको फॉलो भी किया रिलीजियसली, और उसके रिजल्ट्स भी उनके लाइफ में. जब वो रिजल्ट्स दे सक रहा है और वो स्टेटमेंट दूसरे जो बच्चे हैं वो इम्बाइब कर सकते हैं, तो क्यों नहीं ये चेंज उनके लाइफ में भी आ सकता है. तो जो भी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल यही है कि कि हम आत्मविश्वास बच्चों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें. एंड ऑल दिस ओनली विल बी पॉसिबल जब हम रिवैम्प करें एजुकेशन प्रोसेसेस को. केवल टेक्सचुअल पढ़ाई के अलावा बहुत सी चीजें हैं जिससे बच्चों को कनेक्ट करना जरूरी है. जैसे आज हम एनईपी 2020 की बात कर रहे हैं और ये पूरा रिवैम्प हुआ है आज 34 साल के बाद. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में अभी भी जो चीज डिटियोरेट किया है वो है क्वालिटी, वो है वैल्यूज. पहले जो शिक्षक का जो सम्मान होता था, क्या आज हो रहा है?
बिल्कुल नहीं.
हम लोग कई बार ये बात पेरेंट्स को वर्कशॉप में समझाएं कि मनभेद और मतभेद दो चीज होता है. आप मतभेद है तो डिस्कस करो ना आके.
करेक्ट.
टीचर को डिस्कस करो, टीचर के बारे में बताओ यहाँ वो गलत है. टीचर खराब नहीं होती है, गलत कर रहे हो उस तरह मनभेद करके कि ये उसमें ये है, वो ऐसे मेरे बच्चे को कर दे. कोई टीचर ऐसा काम नहीं करती. हर टीचर अपने बच्चे का अच्छा ही चाहती है, क्योंकि हर टीचर में एक ममता अंदर है और वो चाहेगी कि अपना बच्चा अच्छा से अच्छा करे. तो यहाँ पे हम यही चाहेंगे कि हमारा मैसेज जो ऑडियंस को जाए वो ये कि पेरेंट्स या टीचर्स इस बात पे जरा ध्यान करें कि बच्चों में कैसे सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम डेवलप कर सकते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होती जाएंगी.
ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ना बड़ी बेसिक चीज है, लेकिन हम कई बार जो है प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं इस चीज को. हम समझते हैं वही है कि हम जानते हैं सब, लेकिन मानते नहीं है. और एक बड़ा आई वुड से एक और पहलू है रिचा, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसका ये है कि एंग्जाइटी जो होती है बच्चों को तो होती है, मतलब यू नो ठीक है, चाहे वो एग्जाम हो या करियर हो, किसी भी चीज को लेकर होती है. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस करी कि ना बच्चे इस उम्र में, स्पेशली जब 10th 12th वाली उम्र में होते हैं ना, जब टीन्स में होते हैं, तो एक रेबेलियस, अब उसको हार्मोनल चेंजेस बोलिए कुछ भी बोलिए, बच्चा जो है वो चाहता नहीं है, या कई बार एक्सेसिबल नहीं होता, या इतना मनभेद या मतभेद हो जाता है पेरेंट्स से कि उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उनके लाइफ में जो भी चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में खुल के बात नहीं करते हैं. तो ऐसे में क्या राय देंगी, क्योंकि ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये 18 के ऊपर के लोग सुनते हैं, और जो अभी टीन्स हैं या जो कॉलेज में जाएंगे वो लोग भी सुन रहे हैं हमारी बातें. तो क्या आप उनको सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे इस चीज को हैंडल करना चाहिए, कैसे अपनी बातों को खुल के रखना चाहिए, किससे अप्रोच करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए?
बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न मुझसे किया है. मैं इसको तीन भाग में इसका जवाब देना चाहूंगा.
जी.
सबसे पहले मैं भाग इसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पेरेंट्स को दूं कि अगर बच्चा एंग्जाइटी में है तो किन लक्षणों को देखिए. पहला ये देखिए कि बच्चा जो है वो सही समय पे सो के उठ रहा है, जाग रहा है, अपनी दिनचर्या क्या फॉलो कर रहा है, आंख के नीचे कालापन तो नहीं है, खाना ठीक से खा रहा है कि नहीं, ऑब्जर्व करिए. उसकी बॉडी में भी एक हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसके एनालिटिकल थिंकिंग में चेंजेस हो रहे हैं, उसके लॉजिकल एस्पेक्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे उसके बॉडी में स्टिमुलेशन है. और यहाँ पे पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने की जरूरत है, ना कि रिएक्टिव होने की जरूरत है. क्योंकि पेरेंट्स जब चीज गलत देखते तुरंत रिएक्ट, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, एंड बच्चे तुरंत उस चीज से रिएक्ट करते. सो वहां हम भी और रिएक्ट कर जाते हैं. यहाँ चेंज ये लाने की जरूरत है, हमें थोड़ा रिस्पॉन्स, एक बेटर रिस्पॉन्स, ताकि हम अटेंटिव लिसनर हों और कोशिश करें उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझे कि क्या वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है. मैं पेरेंट्स को एक और चीज जरूर सजेस्ट करूंगी, आज के डेट में एक और बहुत खूबसूरत वे है बच्चों को समझने का, वो है ग्राफोलॉजी. बहुत सी अनकही बातें बच्चों के मन की हम हैंडराइटिंग से समझ सकते हैं. और ये बहुत खूबसूरत चीज है, अगर हर पेरेंट और टीचर्स इस चीज को सीखें तो उनकी जिंदगी एकदम अलग हो जाएगी. अब मैं कहती हूँ टीचर्स. टीचर्स जब बच्चों के बीच में हैं तो उनको सब एक ही भाव से देखने की जरूरत है. यहाँ अक्सर वो गलतियां होती हैं कि जो ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस, जो कम रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको उसी अनुसार चीजें देना है, नहीं तो वो इग्नोर हो जाता. बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटी शुड बी सो वेर इन यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू एक्सप्रेस. और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे समाज में वो है सोशल एक्टिविटीज कम हो गई हैं बच्चों की, वो अपने आप को मोबाइल्स पे केंद्रित कर चुके हैं, वो केवल अपने ब्रेन उनकी ट्रेन हो चुकी है जिसमें है कि चीजें जैसे आ रही है वो रिसीव करो, जो मिल रहा है वो हो गया, अपना कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ इनिशिएटिव्स नहीं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना, लोगों से इंटरेक्ट नहीं करना. सो व्हाट इज हैपनिंग, दे डोंट नो वेयर टू गो, हाउ टू एक्सप्रेस, वहां वो लैक कर. तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. एक हमारे यहाँ संस्कृति वर्ल्ड स्कूल में एक इनिशिएटिव लिया, स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों को कहा गया कि दे हैव टू डू अ प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड ईच ऑफ देम विल बी फॉर्मिंग इनटू ग्रुप्स एंड दे विल बी नेमिंग द पार्टी, दे विल बी प्रिपेयरिंग द मैनिफेस्टो एंड द आइडियोलॉजीज सिंबल्स एंड प्रेजेंटिंग टू द ऑडियंस that they are the representative, student representative, and they should be getting elected. Very beautiful. And this class was the most notorious class. Everybody used to complain. But when the results were there in front of us, the students who are not performing academically so well gave such a beautiful presentation that all of us were just in awe. Wow. Awesome. This is something that we didn't even think. You know, we talked about different parties that have existed, and when they presented, they talked about Jan Shakti, they talked about Lok Mat, they talked about Akhand Bharat, they talked about Swayam. These were the names. Can you imagine how beautiful learning it was? So teachers need to reinvent learning for the students also and understand what is required. So they will express. And today, that child who has never been even, you know, looked on by the teacher was appreciated with so many claps.
Absolutely.
So the confidence level will increase slowly, na?
Yes.
So this is where this aspect has to be there. And now to my dear students. Students, for you, anxiety is just something that you are destroying yourself. Find a purpose for your life. Find the skill that you enjoy. Whatever, you may have some interest, you may have some hobbies. Try to find what you're good at. Work on them. Relax. Trust people around you whom you can go and talk to. At least trust your mother, trust your teacher who can be the best guide for you.
Amazing.
So here, there's a lot that can be helped. Help can be provided to them. And things can be good, whereas they will not go the wrong way. But you have to open up. कोई भी प्यासा जो है उसको कुएं पे आना पड़ता है, कुआं अपने आप प्यासे के पास कभी नहीं पहुंचेगा.
जोमेटो पे भी कुआं नहीं आता है.
बिल्कुल, जोमेटो भी आप फोन करेंगे तो ही आपके घर पे पहुंचता है और राइट टाइम पे पहुंचता है जब आपको भूख लगी है.
Absolutely.
So this is where I've taken these three people who are very important in this entire aspect of anxiety to sum up. And anxiety can easily be dealt with if handled by the right people at the right time and the right place.
Great. बहुत उम्दा बातें करी आपने ऋचा, और मेरे ख्याल से बहुत सिंप्लीफाई किया है आपने इस पूरे एस्पेक्ट को, और इतनी दुनियादारी में जो है इतनी सहजता से इन चीजों को एड्रेस करना है, सच में एक हुनर है, कला है जो आप में बखूबी है. और मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात से शायद सहमत भी हो कि जिंदगी में जो है ये सारी चीजें ना एक फेज होता है, और हम लोग ना मूविंग टारगेट पे काम करते रहते हैं. मतलब हमारी लाइफ में शायद 10th में अच्छा स्कोर करना एक लक्ष्य हो सकता है, 2 साल के बाद कुछ और होगा, 3 साल के बाद कुछ और होगा, 10 साल के बाद कुछ और होगा, 20 साल के बाद कुछ और होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ना पीछे वाली चीजों की अहमियत कई बार खत्म हो जाती है. मसलन आज मुझे या आपको या दूसरे लोग जो सुन रहे हैं जो क्वाइट सीनियर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं, अब हमको कोई नहीं पूछता कि हाई स्कूल में तुम्हारे कितने मार्क्स थे या कौन से सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था. आज वो ये देखते हैं कि आप अपना काम करने में कितने काबिल हो. सो बस दोस्त, जिंदगी कुछ ऐसी है कि एक शेर है, मुझे शायद पता होगी, कहते हैं कि तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं. ये जो फेज है हमारी लाइफ का ये चला जाएगा, उसके बाद दूसरी भी और चीजें हैं यार, कोई बात नहीं. आज जो आप कर सकते हो कम से कम आप वो उतना करिए, और उसके बाद में आगे जो है बढ़ते जाइए, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो शो है वो एड्रेस करता है मेंटल हेल्थ को, अगर आपको कभी भी लगता है कि कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, कोई शिकवा है, तो बात कीजिए यार, आपके आस पास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से जैसे यू नो पीपल हु आर वर्किंग विद रिचा एंड हु आर वर्किंग इन हर स्कूल और स्टडिंग इन हर स्कूल, दे आर फॉर्चुनेट टू हैव अ मेंटर लाइक हर। एंड मेरे हिसाब से मतलब यू नो सी इज लाइक सी ब्रिंग्स ह्यूमन इमोशन एलिमेंट इन एवरीथिंग दैट सी डज। रिचा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका कि आप अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए आप आए, और हम और भी सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करनी है। आपने कुछ तार जो है छेड़ दिए हैं और मैं इनवाइट करता रहूंगा आपको हमारे शो पे और ढेर सारी बातें करेंगे। थैंक यू। और इसके पहले कि आज के लिए मैं टाटा बाय बाय बोलूं, मैं दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरी धर्मपत्नी श्वेता और देवाशीष रे जो प्रोड्यूस करते हैं ये पॉडकास्ट और आप तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करते हैं। और दोस्त, लाइफ जो है कई बार जो है एक किश्ती की तरह होती है और उसमें सिर्फ आपको चप्पू चलाते रहना होता है, और अगर कोई मदद ना मिले तो बात करनी होती है, जो जरिया जैसे ऋचा ने बताया कि आपको ढूंढना पड़ता है, आपको अगर प्यास लगी तो आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा, और अगर कोई नहीं मिले तो एक जोड़ी कान है जो आपकी सुनने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। बहुत आसान है मुझ तक पहुंचना, व्हाट्सएप कीजिए, नंबर लिखिए 9819888048, और अगर आपको अपनी पहचान छुपाए हुए कुछ बात करनी है, कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है, जताना है तो भी कीजिए, viveksharma964@yahoo.com ये मेरा ईमेल आईडी है। और अगर आपको ये शो अच्छा लगता है, आप टच में रहना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं आगे जाके, तो भी करिए। और यू कैन फाइंड मी एज विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर ऑन ऑल दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हम फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।